ओम शांति। सुबह हमने बात की थी एक विदेश के संत की, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। उन्होंने एक नया मठ क्रिश्चियनिटी में स्थापन किया था, जिस तरह का पहले कभी नहीं था। उसमें उनकी दो धारणाएं थी, एक सेलिबसी अर्थात प्यूरिटी और दूसरा पावर्टी अर्थात दरिद्रता। वो जो सेंट फ्रांसिस था जब युवा था तो इटली पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया था, इसलिए राज्य के जितने युवा थे उन सभी को तैनात किया जा रहा था, सैनिक बनाया जा रहा था। और उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, इसलिए सेंट फ्रांसिस खुद ही उस सेना में भर्ती हो गया और वो निकल पड़े सारी सेना युद्ध के लिए। और जब वो सेना जा रही थी, सेंट फ्रांसिस पीछे थे, उसके पास एक घोड़ा था। सेना आगे जा रही थी, वो बीच में था, तो उसके घोड़े को प्यास लगी, इसलिए वो पीछे मुड़ा अपने घोड़े को लेकर पानी पिलाने के लिए। और जब घोड़े को पानी पिला रहा था तो अचानक उसे एक आवाज आई, जैसे कि आकाशवाणी, जैसे कि एक डिवाइन कॉल। और उस कॉल ने उसे कहा, फ्रांसिस, फ्रांसिस, फ्रांसिस। उसने वह आवाज सुनी, ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है? और वो आवाज उससे कहती है कि जाओ, जाकर मेरा जो घर है, जो खंडहर बन गया है, उसको पुनः ठीक करो। अब उसके अंदर इतना जोश था देश के लिए कुछ करने का, देश के लिए लड़ने का, शत्रु को मारने का। परंतु जैसे ही वो ये आवाज सुनता है, अपना घोड़ा लौटाकर वापस आ जाता है। जब घर पहुंचता है तो पिताजी बहुत नाराज होते हैं, देश के लिए कुछ करने गया और वापस आ गया। जब वहां के राजा को पता चलता है ऐसे ऐसे एक सैनिक वापस आ गया, तो उसे जेल में डाल देते हैं। और उस जेल के मौन और एकांत में उसके अंदर एक आध्यात्मिक परिवर्तन हो जाता है। जब वो वहां से छूटकर बाहर आता है, तब वो नहीं रहता जो पहले था, जो पहले जैसे उस समय के वहां के सारे युवक युवतियां स्वच्छंद विहार करते थे, अब वो नहीं रहा। वो जब निकलकर बाहर आया तब उसे एक ही लक्ष्य था कि जो घर है, जो आवाज उसने सुनी कि मेरे घर को ठीक करो, गो एंड रिपेयर माय होम, वो ढूंढने लगा ये किसकी आवाज है। और उसको एक खंडहर मिलता है, वो वास्तव में एक पुराना चर्च होता है। और सेंट फ्रांसिस उस चर्च के अंदर जाता है और वहां पर उसको लगता है शायद वो आवाज जो मैंने सुनी थी इसी के लिए कही गई थी। और वो शहर में जाता है, उस गांव में, और बड़े बड़े पत्थर एकत्र करना चालू करता है, क्योंकि उसे जो खंडर बना हुआ जो चर्च है उसको ठीक करना था। और धीरे धीरे वो कर देता है। वहां एक आश्रम बनता है और उसके दिखाए बहुत सारे अनुयायी बन जाते हैं बाद में। जब उसके जीवन को हम देखते हैं तो वहां पर एक डिवाइन कॉल उसको आया, एक ईश्वरीय आदेश, एक डिवाइन कॉल। हर व्यक्ति जो अध्यात्म में अग्रसर होता है, हर व्यक्ति जो अध्यात्म के पथ पर निकलता है, उसको भी ऐसा ही एक डिवाइन कॉल आता है। परंतु ये कॉल किसको आ सकता है? जो इस कॉल के लिए तैयार है। और जब वो कॉल आ जाता है, वो पुकार, वो आवाज, तब व्यक्ति नहीं रुकता है, फिर उसकी सारी संसार की चिंताएं, संसार की आसक्तियां, संसार के मोह, संसार के बंधन, संसार के विकार, वो सब को छोड़कर आगे निकल जाता है सबसे, क्योंकि अब उसे वो आवाज सुनाई दे रही है, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, आ जाओ पकड़ो मेरा हाथ। वो आवाज, एक ही आवाज गूंजती रहती है, क्या ऐसी डिवाइन वॉइस, क्या ऐसा डिवाइन कॉल हमारे जीवन में आया है? क्या कहेंगे? क्या लगता है ऐसी कोई आवाज हमने सुन ली है और जिसमें भगवान उस अव्यक्त आवाज में हमसे कह रहा है, आ जाओ सब कुछ छोड़कर मेरे मार्ग में आ जाओ, मैं पुकार रहा हूं, और जब मैं पुकारता हूं उसके सामने और संसार की कोई आवाज टिक नहीं सकती। क्या मुझ आत्मा ने स्वयं को ऐसा तैयार करके रखा है कि मैं वो आवाज सुन लूं और निकल पड़ूं इस मार्ग में? क्योंकि जो मिलने वाला है वो बहुत है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते, वो तो केवल वो बता सकता है जिसने वो देखा है। जैसे किसी राज्य में एक दूसरे राज्य का व्यक्ति आ जाए जहां पर बहुत सारे हीरे हैं, और वो इस राज्य में आ जाए, यहां के लोगों को हीरे क्या है वो पता तक नहीं है, वो तो पत्थर को ही सब कुछ समझते हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति इस राज्य में आ जाए और वो यहां के लोगों को बताए कि ये जो तुम जिसे हीरे समझ रहे हो, ये हीरे है ही नहीं, हीरे तो कुछ और है। वो कहते हैं कैसे है? अब वो कैसे बताए उनको? वो कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा तो ही तुम उस हीरो को देख सकोगे, नहीं तो कोई मार्ग नहीं, मैं तुम्हें कितना भी समझाऊं, कैसे भी समझाऊं, तुम भी उस हीरो को नहीं जान सकोगे। इसीलिए अध्यात्म का ये जो पथ है, इस पथ में जो अनुभव होते हैं वो हीरो के जैसे है, और वो हीरे वही व्यक्ति बता सकता है जिसके पास वो है और जिसने उसे देखा है। बाकी संसार के लोग तो उसी गंदगी में अगर फंसे हैं तो वो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ऐसे भी कुछ अनुभव होते हैं। क्या देह से परे भी कुछ अनुभव है? क्या देह से परे निकलकर भी इसी देह में रहते हुए ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि वो अनुभव से गुजरने के बाद आत्मा फिर वो नहीं रहती? आत्मा में ऐसा बल भर जाता है, ऐसी शक्ति भर जाती है, बोल में, संकल्प में, कर्म में, शब्द शब्द वाइब्रेशंस वाला है प्यूरिटी के। क्या ऐसा हो सकता है? उत्तर हां, परंतु उसके लिए वो आवाज सुननी होगी, उसके लिए स्वयं को पात्र बनाना पड़ेगा, समानता के पात्रधारी। कल संडे की अव्यक्त मुरली में बाबा ने एक जगह कहा है, दृढ़ संकल्प के पात्रधारी और समानता के पात्रधारी, ऐसी पात्रता हमें अपने अंदर लाना पड़ेगी, तो ही हम उस आवाज को सुन सकते हैं। वो आवाज गूंज रहा है मुरलियों से, आ रही है रोज एक ध्वनि कि मैं जो अब कह रहा हूं और मैं जो सुना रहा हूं और जो मैं कहने को कह रहा हूं वही एकमात्र सत्य है, स्टॉप बाकी सारा कुछ, और केवल ये करो जो अब मैं कहने को कह रहा हूं। द डिवाइन कॉल, द डिवाइन वॉइस। तो आज हम थोड़ी सी उस डिवाइन कॉल को कैसे सुने उसकी चर्चा करेंगे। कौन सी धारणाएं हमें अपने जीवन में लानी है? सबसे पहली बात जो आज की मुरली में बाबा ने कहा, अधर कुमारों के लिए, जो गृहस्थी में है उनके लिए क्या कहा? बाहर वाले क्या कहते हैं? हम तो विकार में गए हैं, हमें जो कुमार और कुमारियां है वो क्या सुनाएंगे, जिनको अनुभव है वो सामने आए। संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था, जो अनपढ़ और बुजुर्ग है उनके लिए कहा था, अनुभव की क्या कहो, कहानियां सुनाओ। जीवन में कुछ भी वैसे तो व्यर्थ नहीं है, जो अनुभव हुए हैं उनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। किस लिए? ताकि हम दूसरों को सिखाए। किसी शायर ने लिखा है, मैं तुमको सिखाना चाहता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक होशियार हूं, मैं तुमको सिखाना चाहता हूं इसलिए नहीं कि तुमसे मैं अधिक होशियार हूं, क्योंकि गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है। जितनी गलतियां मैंने की है उतनी शायद किसी ने नहीं की होगी। इसी गलतियों से अब मैं सीखा हूं और उसको मैं दूसरों को सिखाऊं। तो आप सब लोग, सभी ने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे अनुभव लिए हैं। सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये संकल्प करना है कि मैंने जो जो जीवन में गलतियां की, अगर अवसर आए तो मैं दूसरों को समझाऊंगा, बताऊंगा, सलाह दूंगा कि तुम ये गलतियां मत करना, क्योंकि मैंने करके देख ली, ये हुआ, कुछ भी तो नहीं मिला हाथ में। अनुभव बहुत बड़ी संपदा है। अंग्रेजी में कहावत है, एक्सपीरियंस इज लाइक अ कोम्ब विच अ मैन गेट्स आफ्टर ही बिकम्स बाल्ड। अनुभव उस कंघी की तरह है जो व्यक्ति को कब मिलता है, जब सारे बाल उड़ जाते हैं। कुछ कुछ चीजें जीवन में ऐसी है कि बिना अनुभव किए कोई कितना भी समझाए, परंतु खुद को अनुभव करना होता है तो ही व्यक्ति सीखता है, समझता है। तो जिन भी बातों का आप सब ने जीवन में अनुभव किया है, एक लक्ष्य रखना है कि मैंने उनसे क्या क्या सीखा। आईएएस की एक एग्जाम में अभी अभी एक ऐसे आया था उनको, द ओनली लेसन वी हैव लर्न्ड फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न्ड एनी लेसन। इतिहास से हमने एक ही सबक सीखा है और वो ये सीखा है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा है। तो जीवन में एक दृष्टिपात बचपन से लेकर अब तक, बाबा का बनने से लेकर अब तक, दो पार्ट है जीवन के, प्री रियलाइजेशन, पोस्ट रियलाइजेशन। परमात्मा प्राप्ति के पहले के जीवन, परमात्मा प्राप्ति के बाद का जीवन, इन दोनों जीवनों में मैंने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी गलतियां की, कौन कौन से आवेग आए, कौन कौन से वो ट्रिगर थे, कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे विकारों की ओर घसीटा, वो कौन से फैक्टर्स थे, कौन सी बातें थी, कौन सा चित्र था, कौन सा दृश्य था, कौन सा आकर्षण था, और वो आकर्षण कैसे जीवन में चालू हुआ था और कैसे वो आगे आगे बढ़ गया और उसने कैसा विकराल रूप धारण कर लिया। लग रहा था छोटा सा है, आज सुबह की मुरली फैमिलियरिटी, केवल दोस्ती थी, पर कहां से कहां पहुंचा दिया। हमने जीवन में क्या क्या अनुभव किए हैं, एक उन अनुभव से मैंने क्या क्या सीखा है, वो कौन कौन सी बातें थी, ट्रिगर्स क्या थे, कौन से फैक्टर्स थे, कौन सी दोस्ती थी, कौन सी फ्रेंडशिप थी, कौन सा वीडियो था, कौन सी क्लिप थी, कौन सा पिक्चर था, कौन सी फोटो थी, कौन सा मैसेज था, कौन सा साधन था, कौन सा सोशल मीडिया का वो एप्लीकेशन था, क्या था जिसने मुझे विकार या किसी कमजोरी की ओर प्रवृत्त किया। सबसे पहले सेल्फ चेकिंग, अपने ही जीवन को देखना है पीछे मुड़कर। यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा था, सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? उत्तर क्या देता है युधिष्ठिर? चारों पांडव मरे पड़े हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर उसमें से एक उत्तर ये था, प्रश्न ये था, और वो कहता है यहां व्यक्ति इतनी गलतियां करता है परंतु अपनी गलतियों से कभी भी सीखता नहीं है। व्यक्ति मर रहा है परंतु सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा, दूसरे मरते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो आप सभी के पास एक संपदा है, कौन सी? एक्सपीरियंस की। सब चीजों का एक्सपीरियंस, जीवन का, व्यवहार का, मनुष्य मन की जटिलता का, संबंधों का। इस अनुभव से आप दूसरों की मदद कर सकते हो, बजाय इसके कि यह ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जो भी हुआ उसके पीछे सूक्ष्म कारण था, मुझे सीखना था उससे, उस बात को मुझे ये बात सिखानी थी, इसलिए हुआ। इसलिए नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स, नो रिपेंटेंस। नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स, नो रिपेंटेंस। जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हुआ अब उससे मुझे सीखकर आगे बढ़ना है, जो हुआ उससे मुझे सीखना है और उससे दूसरों को सावधान करना है ताकि दूसरे वो गलती न करें। ये एक मुख्य धारणा है, इंट्रोस्पेक्शन रिट्रोस्पेक्शन पहला। दूसरा, अपने जीवन में कुछ समय स्वयं के लिए निकालना है, स्वयं के लिए अर्थात मौन के लिए। मौन वह जादुई तिलिस्म है, मौन एक ऐसा ताबीज है कि अध्यात्म भीड़ में कभी भी फलित नहीं होता है। अध्यात्म के अनुभव इतने सूक्ष्म है कि उसके लिए गहन मौन की आवश्यकता है, और जितना गहरा मौन होगा उतने ही गहरे अनुभव होंगे। तो सुबह अमृत वेले के बाद से लेकर तो कम से कम 8 बजे तक संपूर्ण मौन। और उस मौन के साथ और एक चीज जोड़ेंगे, वो है प्रकृति का सानिध्य। एक है इस कमरे में बैठकर चिंतन करना, एक है निसर्ग के सानिध्य में चिंतन करना। वहां पर बुद्धि अपने आप खुल जाती है। जितना हो सके या तो टेरेस, या तो कोई गार्डन, या तो लंबी सड़क, मुरली की कोई एक पॉइंट लेकर उसका चिंतन करते करते जाना। चिंतन में जो सुख है, जो अमृत उससे निकलता है, वो क्लास सुनने से नहीं निकलता है, मुरली सुनने से भी नहीं, पढ़ने से भी नहीं, क्योंकि वो जो निकल रहा है हमारा अपना चिंतन बाहर आ रहा है, जो हमने सुना है अब उसको दोहराना। हमको याद है हम एक बार नकी के राउंड के लिए जा रहे थे, तो चालू ही कर रहे थे तो एक बहुत पुराना कोई पेशेंट मिल गया, जिसकी मां कभी एडमिट थी, हमको तो याद भी नहीं कब एडमिट थी। इतने पेशेंट आईसीयू में रोज आते और रोज जाते, कितने वेंटिलेटर और कितना क्या। तो वो एकदम आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे पहचाना? हमने कहा नहीं, कौन बोलो। तो उसने कहा मेरी माता जी 5 साल पहले आईसीयू में एडमिट थी, वेंटिलेटर भी थी, आप नहीं होते तो वो जिंदा नहीं रहती, आप नहीं होते तो वो नहीं बचती। अब वो इतना कहकर चला गया। ठीक है, हम अभी राउंड चालू ही करने वाले थे तो हमारे मन में संकल्प आया, इस व्यक्ति ने जो कहा आप यदि न होते तो मेरी मां नहीं बचती, हमारे मन में संकल्प आया बाबा यदि तुम न होते तो मैं कहां होता। और ये चिंतन का बिंदु लेकर हम चिंतन करते गए। जब वापस लौटे तो मुझे लगता है लगभग 50 पॉइंट्स आ गए होंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में यदि भगवान ही ना आता तो हम कहां पड़े होते, क्या कर रहे होते, क्या इतने उसके उपकार है। उन उपकारों का चिंतन, उन प्राप्तियों का चिंतन, उस भाग्य का चिंतन। और जब चिंतन करके आत्मा लौटती है तो शक्तिशाली हो जाती है। ऐसी आत्मा को फिर माया नहीं हिला सकती। तो दूसरी धारणा, पहली धारणा बताई इंट्रोस्पेक्शन, सिंहावलोकन, खुद को देखना कि मैंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या आवेग आए जीवन में, कौन कौन से वो पैशन थे, कौन कौन सी वो आदतें थी, कौन कौन से वो संस्कार थे, कौन से मेरे एडिक्शंस है जो अब भी चल रहे हैं, वो सब देखना। दूसरा मौन, तीसरा एकांत। बाबा ने एक एकांत की परिभाषा दी है, वो तो बहुत ऊंची परिभाषा है, हम उस एकांत की बात नहीं कर रहे। एक के अंत में खो जाना, ये तो योग की अवस्था है। हम स्थूल एकांत की बात कर रहे, अर्थात सॉलिट्यूड। हर आत्मा को प्राइवेसी चाहिए, सॉलिट्यूड चाहिए, टू ब्रीद, एकांत, अकेले, कोई ना हो आसपास, कोई आवाज नहीं, संसार की कोई आवाज नहीं। और ऐसा समय भी सुबह का ही है, और ऐसा स्थान भी प्रकृति ही है, जहां केवल और केवल प्रकृति की आवाजें आ रही है, केवल चिड़िया की चहचहाट। बड़े शहरों में मुश्किल है, फिर भी अगर ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा, छत होगा तो कहीं गार्डन होगा, जहां पर मनुष्य वैसी आवाजें नहीं है जैसी संसार में अभी है, दिन में, दोपहर में, शाम को। मौन, एकांत, उस एकांत में जाकर वहां चिंतन करना है, क्या खोया और क्या पाया जीवन में। क्या भगवान को पाने के बाद भी बहुत सारी गलतियां हो रही है? क्या भगवान को पाने के बाद भी जो आवेग, जो पैशन, जो वासनाएं, जो विकार के संकल्प अभी भी चल रहे हैं पोस्ट गॉड रियलाइजेशन? यदि हां तो क्यों, कारण क्या है? कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म कारण है उसके, क्यों चल रहे हैं वो आवेग, क्यों आता है संकल्प और सब कुछ बहा ले जाता है अचानक। कुछ न है, कुछ तो लीकेज है। तो जितना हो सके कम से कम 8 बजे तक साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, डिजिटल साइलेंस एंड डिजिटल सॉलिट्यूड। डिजिटल साइलेंस पता है ना, कईयों की इतनी आदत है मैसेजेस की, भेजते ही रहते हैं, भेजते ही रहते हैं, भेजते ही रहते हैं, भेजते ही रहते हैं। अमृत वेला हो गया मतलब उसके बाद तुरंत वो महत्वपूर्ण काम है, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सदगुरुवार। सूक्ष्म में आत्मा इन साधनों में ही बंध गई है। जब तक यदि इमरजेंसी नहीं है तब तक सारे साधन एक तरफ। हां, साधनों का प्रयोग करना है तो वो ज्ञान और योग के लिए, सुबह हम बहुत बात कर रहे हैं, चाहे मुरली पढ़नी है या कुछ और करना है या कोई क्लास सुनना है, बस अमृत वेला और पोस्ट अमृत वेला ये पीरियड सफल हो जाए तो इसके जैसा कुछ नहीं है। 7 बजे या 6:30 बजे जो भी टाइम होगा मुरली के, उसके पहले का और अमृत वेले के बाद का ये जो टाइम है इसी को ठीक करना है, बजाय इसके कि सो जाए जाकर, स्वयं को जगाना है। वो टाइम इतना महत्वपूर्ण है कि उसी समय पर मुरली चिंतन अध्ययन होता है, बाकी समय में बुद्धि इतनी फ्रेश नहीं होती है। मुरली क्लास सुन ली, उसके बाद पोस्ट मुरली क्लास जो हम नाश्ता करें या उससे भी पहले जो कुछ सुना है क्लास में उसी मौन की अवस्था में उसको रिवाइज करना है। वो इतनी बार रिवाइज हो जाए कि हमको बहुत सारी चीजें याद हो जाए। बहुत सारी चीजें हमने सुनी है परंतु हमें उसके दूसरे अर्थ ढूंढने। आज सुबह की मुरली, तुम्हें फैमिलियरिटी में नहीं आना है, तुम्हें नाम रूप में नहीं फंसना है, इसका अर्थ क्या है? चिंतन करना है, सोचना है, गहराई में जाना है, ये भगवान क्यों कह रहा है? वो भोलानाथ है तो भोलानाथ क्यों है? किस डमरू की उसने बात की है, किस शंख की उसने आज बात की है? एक एक शब्द, एक एक वाक्य मुरली का क्या अर्थ है, क्या भाव है? कितना मैंने उसको समझा है और कितना मैंने उसको धारण किया है। परहेज करो, कौन सी परहेज करो? मुरली और मुरली के बाद का समय, हाँ उसके बाद फिर कर्मयोग, और कर्मयोग भी जो है वो इतना कर्मयोग में खो ना जाओ, इतना खो ना जाओ कि जिसके लिए कर रहे वही छूट गया, इतना धन के पीछे खो ना जाओ कि जिसके लिए धन इकट्ठा कर रहे, समय आएगा कि वो कहेगा मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। द वाइल्ड गूस चेज, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जो बाहर है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है तो टाइम चाहिए, अच्छा टाइम। कोई अगर कहे मैं 4 घंटा ट्रैवलिंग करूंगा और 12 घंटा ड्यूटी करूंगा, तो मुरली कब पढ़ोगे, पुरुषार्थ कब करोगे? अमृत वेला शक्तिशाली कैसे होगा? रात को लेट उठे सोएंगे, दिन में नींद आएगी। दो जीवन है, चुनाव है, एक संसार की ओर जाने वाला, एक भगवान की ओर जाने वाला। यदि भगवान की ओर जाने वाला चुना है तो उसमें फिर जो कुछ वो कहता है वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये भी और वो भी, यू कैनॉट सर्व 2 मास्टर्स। सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड इज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड इन टू इट। जीजस के शिष्य उसके पास आकर पूछते हैं, हे प्रभु हम कैसे जाए, कहां जाए, हमारे पास खाने के लिए नहीं, पैसे नहीं। वो कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ, पर कैसे सुनाए, हमें तो बोलना भी नहीं आता है। वो कहता है कि सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले प्रभु के राज्य को पाओ और ये सारी चीजें शैल बी एडेड इन टू इट, सब अपने आप मिल जाएगा। यदि प्रभु को छोड़ दिया और दूसरी चीजें पाने चले गए तो न वो मिलेगी, न वो, न माया मिली न राम, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसके लिए जिन्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, अपने आप को थोड़ा सा समेटना है, डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट लो। ऐसा नहीं कि मैं ही इंचार्ज हूं और मैं ही सब कुछ करूं, दूसरे भी है, गिव हैंड ओवर, और खुद को थोड़ा थोड़ा फ्री करो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ समय चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं यहां पर जो नियमित नुमा शाम का योग करते हैं, चाहे 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30, भाइयों में से, अधर कुमारों में से बहुत कम है। जो अनुभव अमृत वेला होता है उससे भी अधिक शक्तिशाली अनुभव शाम को होना चाहिए, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें तो, हम ट्रैवलिंग में है, हमारी ड्यूटी है, किसने इतना उलझा रखा है, हमने खुद ने उलझा रखा है खुद को। वो डिवाइन कॉल तो वहां से आ रही है परंतु हम सुन नहीं रहे। कई लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि अमृत वेले के बाद सोना नहीं, पर हमको दिन भर टाइम नहीं मिलता, हमको ये नहीं मिलता, हमको वो नहीं मिलता। कारण शायद लोभ है, ग्रीड, कहीं ना कहीं ग्रीड है हमारे मन में। ही हु गिव्स टू गॉड सेकेंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। भगवान को जीवन में दूसरे स्थान पर रखना अर्थात उसे किसी भी स्थान पर नहीं रखना, उसे फर्स्ट प्लेस पे रखना है, फर्स्ट वो और फिर बाकी सब कुछ, बाकी सारा संसार। तो ये चेकिंग करनी है, एकांत की बात हम कर रहे थे। चौथा, भोजन, भोजन। हमेशा हम कहते हैं कि भोजन के 4 स्तंभ है, रसोई, चौका, चार बातें, भोजन का पैसा कहां से आ रहा है, शोषण से, दो नंबर से किसी को दुख देकर, पीड़ा देकर, गलत तरीके से, तो भोजन कितना भी योगयुक्त बनाओ उसमें वो शक्ति नहीं रहेगी। मुरलियों में आता है बाप पास से बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, झूठ बोलना पड़ता है नौकरी में धंधे में, शायद वो जॉब ही गलत है, शायद जॉब को ही चेंज कर दो, ये आवश्यकता है। वो हर कर्म जिससे पैसा आ रहा है कैसा वो मार्ग है, भोजन के लिए पहला, दूसरा किस तरह का भोजन, राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है। गरिष्ठ भोजन, अति तेल मसाले वाला भोजन, जहां इंद्रिया विचलित हो, क्या एक योगी का भोजन है? जिन्होंने रसेंद्रियों को नहीं जीता वो जनेंद्रियों को कैसे जीतेंगे? जितना हो सके वो सादा हो, हल्का हो, गरिष्ठ ना हो, ऐसा ना हो कि वो खाकर नींदी आ जाए, अधिक ना हो कम हो। वो कहते हैं ना, व्यक्ति जितना खाता है उससे आधा पेट खुद का भरता है और आधा डॉक्टर का। बार बार बीमार पड़ने वाले, बार बार कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम्स, बार बार कुछ ना कुछ व्याधि, कैसे योग करेंगे, कैसे तपस्या करेंगे? योगी के लिए महत्वपूर्ण है वो उसके देह को अच्छे से संभाल के रखे, उसमें ऐसा कुछ ना जाए जिससे देह का स्वास्थ्य बिगड़ता हो। इसलिए भोजन का दूसरा है किस प्रकार का वो भोजन है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, किस अवस्था में वो भोजन बनाया जा रहा है। चाहे आप लोग न भी बना रहे हो, पर कोई कोई अधर कुमार खुद भी बनाते हैं। बनाते समय चित्त की कैसी दशा है, और चौथा खाते समय, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि क्रोध में भोजन स्वीकार किया जा रहा है, इट इज एज गुड एज नॉन वेज। यदि मन में प्रसन्नता का भाव नहीं है, कृतज्ञता का भाव नहीं है, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड नहीं है, भोग लगाकर स्वीकार नहीं कर रहे हम, उस पर टूट पड़ रहे हैं, समर्पण का भाव नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है, तो वो भोजन भी राजसिक ही है। ये चारों ही चीजें भोजन के विषय में, जितना हो सके अलग से टाइम निकाल के, मोबाइल बंद, भोजन भी चालू है, मैसेजेस भी चालू है, मोबाइल भी चालू है और व्हाट्सएप भी चालू है और भोजन भी चालू है, भोजन भी चालू है और टीवी भी चालू है। एक भाई मिले थे, वो कहते थे हम टीवी देखते देखते भोजन करते, जब ऊपर देखते हैं तो टीवी देखते, नीचे देखते तो बाबा को याद करते, इधर बाबा को याद किया फिर टीवी देखा। आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखे से बचाना है। किसको हम धोखा दे रहे? आज की मुरली में बाप सब कुछ जानता है, छिपा नहीं सकते कुछ, उसकी आंखें सर्वत्र, हिज आईज आर एवरीवेयर। ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर, ही दैट प्लांटेड द आई शैल ही नॉट सी। जिसने आंख दी वो नहीं देखेगा, पग बिनु चलोगी सुनई बिनु काना। ऐसा कुछ नहीं, तुम अपने आप को नहीं छिपा सकते। इसलिए भोजन प्रार्थना, भोजन एक यज्ञ है, भोजन में उतनी ही पवित्रता हो, चित्त की भी, बनाने की भी, उसकी क्वालिटी की भी, और जो पैसा आ रहा है उसकी भी, सभी तरह से इतना ध्यान भोजन पर। पांचवा कर्मयोग। सब लोग बिजी है, जॉब में है, काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बहुत लोगों से डील करना पड़ता है, पर ये सब करते हुए भी किसी को दांत में दर्द हुआ है, कभी दांत में जब दर्द होता है तो सारा ध्यान उसकी तरफ होता है, दिन भर कुछ भी करते रहो ध्यान इधर ही रहता है, दांत का दर्द इतना जबरदस्त होता है। भक्ति में कहते हैं परमात्मा प्रेम दांत के दर्द के जैसा होना चाहिए, जैसे दर्द होता है ना तो सारा ध्यान कुछ भी करते रहो वो ठनकता है ऐसे ऐसे और खींचता है, जब तक अगर पेन किलर ले रहे होगे तो नहीं होगा, पेन किलर नहीं लो वैसे देखो क्या होता है, सारा ध्यान उस दांत की तरफ रहता है। उसी तरह संसार में सारे कार्य करते समय हृदय उधर, बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास, बीच बीच में ड्रिल, बीच बीच में कोई ना कोई अभ्यास होते रहे। तो कर्म योग हमारा, जगदीश भाई कहा करते थे कि कर्म करते समय इतना ही ना भूल जाओ कि सीधा 5 बजे बाबा को याद किया और सीधा फिर रात को 10 बजे, बीच में पता ही नहीं। भगवान के प्रवास यदि व्हाट्सएप हो तो उसका लास्ट सीन में हम दिखाई देंगे सुबह 4 बजे, 4 AM, उसके बाद में नॉट सीन, बस तू सुबह मिले थे उसके बाद में पता नहीं कहां खो गए। तो कर्म योग। अगला नुमा शाम का योग। अच्छा, नुमा शाम के योग के टाइम पे यदि हमारी जॉब है, ट्रैवलिंग है, उस समय एटलीस्ट 6:30 से 7:30 उस समय सब कुछ करते हुए भी मौन हो जाए और सोचो मेरा योग पीरियड चालू हो गया, सोचो मैं मधुबन में हूं, सोचो ओम शांति भवन में योग चल रहा है, सोचो डायमंड हॉल में या कॉन्फ्रेंस हॉल में योग चल रहा है और मैं सूक्ष्म शरीर से वहां पहुंच गया हूं, मैं शांति स्तंभ में चला गया हूं। यह अभ्यास करना, वहां से हट जाना मन से सब कार्य करते हुए। यदि जॉब है, यदि कुछ भी नहीं है तो सीधा अपने कमरे में, हर एक ने बाबा का कमरा अगर बनाया है तो वहां जाकर बाकायदा नीचे बैठकर वो पीरियड योग करना है। योग न भी लगे तो भी बैठना है। और उसमें एक चीज और ऐड करनी है, शाम का जो टाइम है उसमें बाबा को अपना चार्ट देना है, याद का चार्ट नहीं कह रहे हम, दिनचर्या का चार्ट, कि सुबह से लेकर अब तक हमने क्या क्या किया, किस किस से मिले, क्या क्या हुआ, कौन कौन मिला, सारी बातें खाली बताना है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, न्यूज खाली न्यूज बताना है उसको कि ये हुआ और अभी मैं यहां हूं, अभी दिन बाकी है और न्यूज। बाबा कहते मुझे बताओ, न्यूज बताओ अपनी, छुपाओ नहीं कुछ भी, बता दो उसको, संकल्प भी मत छुपाओ, ये कहते हैं। तो वो एक, और फिर लास्ट पॉइंट है रात को सोने से पहले। कई सारी मुरलियां हैं सोने की विधि, सबसे पहले तो ये जो है इसको थोड़ा सा बाजू, एटलीस्ट आधे घंटे पहले। इस सदी का सबसे बड़ा जोक कौन सा है पता है, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स वर इन्वेंटेड टू सेव टाइम। कंप्यूटर और मोबाइल की खोज इसलिए की गई थी कि मनुष्य का समय बचे, ये सबसे बड़ा जोक है। इतना जकड़ गया है व्यक्ति इसमें। हां, वो अगर ज्ञान योग के लिए एक साधन की तरह प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है, परंतु उसमें इस तरह फंस गया, इस तरह जो कल की मुरली में था ना, विकारों में जकड़ गए हैं मम्मा की मुरली में, वैसे इसमें जकड़ गए हैं। ऑक्टोपस ग्रिप, ऑक्टोपस होता है 8 हाथ होते हैं उसके, ऐसे पकड़ लेता है वो ऑक्टोपस, वैसे ऑक्टोपस ग्रिप है। सोने की विधि, एक अपनी एक सीरीज चालू करो अव्यक्त मुरलियों की, पर्सनल। स्पार्क की किताबें ले सकते हो, उसमें छोटी छोटी सीरीज है बहुत सारी, कोई भी एक सीरीज अपनी खुद की चालू करो और वो किताब आपके तकिया के नीचे रहेगी। सोने से पहले आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, फिर ही सोना है। 1 महीने में एक सीरीज पूरी करनी है, मतलब 30 जिसमें डेट होती है, ये व्यक्तिगत सीरीज है आपकी, और वो किताब वहीं रहेगी। बस एक किताब ऑफिस में रख दो, अलग अलग स्थान पर किताबें रखी रहे, अव्यक्त मुरलिया या बाबा की बातें। ट्रैवलिंग का जो पीरियड है उसको भी थोड़ा सा, कुछ क्लास सुनने उसमें सफल करना है। तो रात में सोने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा बाहर, एटलीस्ट हाफ एन आवर। दूसरा अव्यक्त मुरली रीडिंग, और तीसरा सोते समय अगर ये हमारी खटिया है, यहां हम सो रहे हैं, तो इस खटिया के वाइब्रेशंस और उस कमरे के वाइब्रेशन स्ट्रांग हो, ताकि कोई कुस्वप्न दुस्वप्न नाइटमेयर ना हो। जैसे हम हमेशा कहते हैं कुछ अंगरक्षक बिठा दो, जैसे हमारा सर अगर यहां है तो यहां हम एक सामान ले ले कि एक सामान यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, एक यहां, एक बीच में, दो, 1 2 3 4 5 6 7 सात अंगरक्षक, एक सामान यहां, उस सामान का अभ्यास करते करते सो जाना है। जैसे यहां पर मैं संपूर्ण उपराम हूं, ऐसे संकल्प लेने हैं कि जो हमको डिटैच कर दे सारी दिनचर्या से। मैं उपराम हूं, इस संसार से अब मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं साक्षी हूं, मैं अनासक्त हूं, मैं निर्मोही हूं, मैं लगाव मुक्त हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं, मैं सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे कोई भी सामान लेना है और उसमें स्थित हो जाना है। तो ऐसी ये दिनचर्या की बातें है जो हम सभी को करनी है, ताकि ये जीवन जो हमने कहा अनुभव से इतनी सारी बातें हैं यहां पर, हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना हो। टाइम वेस्टर्स क्या है उसकी लिस्ट निकालो। कौन सा व्यक्ति है कि जिससे एक बार मिल गए तो बातें ऐसी चालू होती कि 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जितने लीकेजेस है सारे लीकेजेस स्टॉप, जहां जहां टाइम वेस्ट होता है सारा स्टॉप, ट्रेन में, लोकल में, जहां पर भी, जहां पर भी वेट कर रहे हैं किसी लिए, कुछ मुरली की पॉइंट निकालो और चिंतन करो। ठीक है, टाइम हो गया। तो एक लास्ट 2-3 मिनट के लिए एक प्रयोग करेंगे, सभी योग युक्त होकर बैठेंगे। इस प्रयोग में सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, सभी को आत्मिक स्थिति में पहले स्थित होना है। हम यहां से कमेंट्री देंगे और फिर उसी आत्मिक स्थिति में जब हम कहेंगे सबको खड़े होने के लिए, खड़े हो जाएंगे और हॉल में थोड़ा सा यहां वहां घूमेंगे, बिना किसी से बात किए केवल आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हो। यह अभ्यास हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जब बाहर रहते हैं, सड़क पर चल रहे, इतने सारे लोग हैं, ये अभ्यास फिर आपको अपने कर्म क्षेत्र में करना है। ठीक है, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, अपनी संपूर्ण पवित्र अवस्था में, संपूर्ण निर्विकारी, पवित्रता ही मेरा अनादि संस्कार है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मेरा ये जीवन संपूर्ण पवित्र है। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, मैं एक प्रकाश पुंज हूं। इसी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, संपूर्ण मौन, आत्मिक दृष्टि, और धीरे धीरे हॉल में चारों ओर घूमना चालू करेंगे, जो भी दिख रहा है उसको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा, मुझसे पवित्रता की किरणें चहुओं और फैल रही। सामने वाले पीछे जाएंगे, पीछे वाले सामने आएंगे। संपूर्ण आत्मिक स्थिति, कोई आवाज नहीं, सितारों की यह महफिल है। चारों ओर आत्माएं हैं, किसी स्थान पर नहीं रुकेंगे, चलते जाएंगे। पीछे वाले सामने आएंगे, सामने वाले पीछे। जो भी दिख रहा है भ्रुकुटी पर चमकता हुआ सितारा, आत्मा चमक रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता, कोई आवाज नहीं, धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आ जाएंगे। जो भी दिख रहा है संपूर्ण पवित्र आत्मा है, पवित्रता का जैसे सैलाब आया है, चारों ओर पवित्रता की तरंगे हैं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मेरी पवित्रता का पुनः जागरण हुआ है। पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मेरे सिर पर है। मैं संपूर्ण पावन आत्मा, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। आज मैं बाबा से और स्वयं से पुनः संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति।